नमस्कार, एसबीएस हिंदी से मैं हूं साहिल मकड़, और आज मेरे साथ हैं डॉक्टर अविनाश शर्मा। डॉक्टर अविनाश लिवरपूल और कैंबल टाउन हॉस्पिटल में आईसीयू में डॉक्टर हैं। डॉक्टर अविनाश, आपका एसबीएस हिंदी में स्वागत है। डॉक्टर
थैंक यू साहिल।
अविनाश, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा बूस्टर डोजेस के बारे में। अब काफी सरकार जो है, फेडरल सरकार भी और राज्यों की सरकारें भी इस बात पे जोर दे रही हैं कि लोग जो है अपना बूस्टर डोज लगवाएं। तो ये बूस्टर डोज जो है किसको लगवानी चाहिए? और अभी आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में जो है पूरे ऑस्ट्रेलिया में, खासकर न्यू साउथ वेल्स में, केसेस की संख्या काफी बढ़ गई है, तो उसको देखते हुए बूस्टर डोज लगवानी चाहिए?
देखिए साहिल, जैसा कि आपने कहा कि पूरे ऑस्ट्रेलिया में केसेस नंबर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो आई थिंक बूस्टर लगवाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि समय के साथ अपनी प्राइमरी वैक्सीनेशन, जो कि 2 डोज का वैक्सीनेशन था, उसके बाद अपनी इम्यूनिटी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, और बूस्टर उस इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और विद द करंट केस नंबर्स जो कि बढ़ रहे हैं, तो हमें एक ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ इम्यूनिटी चाहिए, जिससे कि हम अपने इन्फेक्शंस और सीवियर डिजीज, हॉस्पिटलाइजेशंस को रोक सकें। और एविडेंस बताता है कि वैक्सीनेशन से हम सीवियर डिजीज, हॉस्पिटलाइजेशंस को रोकते हैं, और इससे एक तरह से हमारे सिस्टम पे जो बर्डन बढ़ता है वो कम होता है। तो बूस्टर्स बहुत इम्पोर्टेंट है। कमिंग ऑन टू योर सेकेंड क्वेश्चन कि किन को बूस्टर लगवानी चाहिए, तो 4 जनवरी से जो भी व्यक्ति 18 साल से अधिक हैं और उनकी लास्ट वैक्सीन को 4 महीने हो चुके हैं, वो बूस्टर डोज के लिए एलिजिबल है। जनरली अगर आपको फाइजर वैक्सीन लगी है तो आप फाइजर का बूस्टर लगवा सकते हैं, पर अगर आपको कोई और वैक्सीन भी लगी है तो भी आप फाइजर वैक्सीन के लिए एलिजिबल हैं।
तो क्या आप मोडर्ना का भी बूस्टर लगवा सकते हैं? मान लीजिए मुझे फाइजर की 2 डोजेज लगी थी पहले, तो क्या मेरे पास अब ऑप्शन है कि मैं मोडर्ना की भी बूस्टर लगवा सकता हूँ?
ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया में फाइजर और मोडर्ना दोनों ही बूस्टर डोजेस के लिए अप्रूव्ड हैं। ये मेरी जनरल एडवाइस है कि अगर आपने फाइजर का प्राइमरी वैक्सीनेशन यानी कि 2 डोजेस फाइजर की ली हुई हैं, तो आप बूस्टर भी फाइजर का लें। उसका कारण यह है कि जो आपको ये हमें पता है कि प्रीवियस वैक्सीनेशन आपके लिए सेफ था और आपको कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं हुए थे, तो बूस्टर से उसी तरह के साइड इफेक्ट्स होंगे, और इट विल बी सेफ फॉर यू इफ इट वाज सेफ फॉर यू अर्लियर।
जी डॉक्टर शर्मा, क्या ये बूस्टर डोसेस कोरोना वायरस के नए वेरिएंट, जिसे हम ओमिक्रॉन के नाम से जानते हैं, से लड़ने के लिए कारगर है?
देखिए, लास्ट 2 वीक्स में हमारे पास ज्यादा से ज्यादा एविडेंस आ रहा है कि जो ये करंट वैक्सीन्स हैं, ये ओमिक्रॉन के लिए भी इफेक्टिव हैं। अगर आप बूस्टर लेते हैं तो सर्टेनली ये आपके ओमिक्रॉन इन्फेक्शन और डिजीज में आपकी हेल्प करेगा।
जी डॉक्टर शर्मा, एक बात जो पूरी कम्युनिटी जानना चाहती है कि न्यू साउथ वेल्स में जैसे 95% लोगों की डबल वैक्सीनेशन हो चुकी है, उसके बाद भी हम जो है केसेस की जो संख्या देख रहे हैं वो 22 से 23 हजार रोजाना देख रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? तो पहले तो एक आ गया था कि अगर आप जो है वैक्सीन लगवाते हैं तो केसेस कम आएंगे, लेकिन अब तो हम देख रहे हैं कि 95% होने के बावजूद भी 22 से 23 हजार केसेस रोज आते हैं।
देखिए, वैक्सीन्स का प्राइमरी पर्पस और ऑब्जेक्टिव ये है कि वो एक सीवियर डिजीज को रोके, हॉस्पिटलाइजेशंस को रोके, और इनफैक्ट आपकी डेथ रेट को भी कम करें। और मुझे जो हमारे पास एविडेंस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि वैक्सीन इन सब चीज़ों में काफ़ी कारगर है। इन्फेक्शंस वैक्सीन्स जनरली इसके लिए नहीं डिज़ाइन की गई है कि वो इन्फेक्शंस को रोकें, पर हमारे पास एविडेंस है कि वैक्सीन से ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस होता है वो रुकता है। तो वायरल का, और जैसे जैसे आपकी इम्यूनिटी कम होती जाती है प्राइमरी वैक्सीनेशन के बाद, तो योर इम्यूनिटी लेवल्स आर लो, तो आपको इन्फेक्शन का खतरा तो होता है लेकिन सीवियर डिजीज का खतरा कम होता है। तो और बूस्टर से वो खतरा भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन्फेक्शंस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ रेट पे वैक्सीनेशन की वजह से उतनी ज़्यादा, जितना डेंजरस हो सकता था उतना ज़्यादा डेंजरस नहीं है, तो उस हिसाब से आईसीयू एडमिशन रेट कम है।
जी जैसे आप आईसीयू के डॉक्टर हैं, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि जो आपके पास जो अस्पताल में जो आईसीयू में भर्ती हो रहे हैं लोग, उसमें क्या ओमिक्रॉन वाले लोग ज्यादा हैं या डेल्टा वाले ज्यादा हैं?
देखिए, अभी इन सब की जीनोम सीक्वेंसिंग चल रही है, और ये डेटा बाद में अवेलेबल होगा, तो अभी हम सब उस डेटा का वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी ये कहना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है कि किस वेरिएंट के केसेस ज्यादा हैं।
जी, क्या डॉक्टर अविनाश आप हमें ये बता सकते हैं कि जो केसेस आ रहे हैं उसमें जो आईसीयू में केसेस हैं उसमें लोगों की संख्या जो है अनवैक्सीनेटेड लोगों की संख्या ज्यादा है या वैक्सीनेटेड लोगों की संख्या ज्यादा है?
सी आप जो न्यू साउथ वेल्स हेल्थ की प्रेस रिलीज भी देखेंगे तो उसमें ये बताया गया है कि अनवैक्सीनेटेड लोगों का आईसीयू एडमिशन ज़्यादा है आज की तारीख में। मैं तो जी हाँ, अनवैक्सीनेटेड लोगों का आईसीयू एडमिशन ज़्यादा है।
जी, तो डॉक्टर विनाश हमें कैसे पता चलेगा कि अब जो है हमारी वैक्सीनेशन ड्यू हो गई है, बूस्टर डोज ड्यू हो गई है?
सी देखिए, अगर आपने आपका जो प्राइमरी वैक्सीनेशन लिए हुए, आपको 4 महीने हो चुके हैं, तो आप उस डेट से अगर आपके 4 महीने पूरे हो चुके हैं तो आप एलिजिबल हैं वैक्सीनेशन के लिए। तो आप बूस्टर डोज nsw.gov.au पर जाके अपना बूस्टर डोज का अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।
जी, यानी कि हमारी सेकेंड डोज के 4 महीने के बाद से? जी
जी हाँ
जी तो डॉक्टर विनाश, क्या बूस्टर डोसेस के साइड इफेक्ट भी होते हैं? क्योंकि हमने काफी लोगों से सुना है कम्युनिटी में कि इस बार थर्ड डोज के बाद उन्हें काफी पेन हुआ है, ज्यादा पेन हुआ है उनकी बॉडी में, उनको काफी वीकनेस फील हुई है। तो क्या ऐसे सिम्टम्स आपने भी देखे हैं, आपने भी सुना है?
सी जो बूस्टर डोज के सिम्टम्स हैं वो उसी तरह के साइड इफेक्ट्स हैं जो कि सेकेंड डोज के बाद जो साइड इफेक्ट्स हुए थे। और अब हमारे पास डाटा है बहुत ओवरसीज से भी और ऑस्ट्रेलिया से भी कि जनरली जो साइड इफेक्ट्स हैं वो उसी तरीके के हैं, और कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं जैसे कि हाथ में दर्द होना, थोड़ा बेचैनी होना, थकान होना, ये मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। और ये 24 से 48 घंटे के अंदर मोस्टली अपने आप ही सेटल हो जाते हैं। अगर आपको उस दौरान कोई सिंपल पेन किलर लेना पड़ता है या बुखार के लिए कोई टेबलेट लेनी पड़ती है तो वो भी आप ले सकते।
जी, अगर सिम्टम परसिस्ट करते हैं लंबे समय के लिए तो आपको अपने जीपी के पास जाना चाहिए।
जी जी जरूर, अगर वो सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं जो कि बहुत ही रेयर है और ऐसा हाँ सुनने में नहीं आता, पर अगर ऐसा है तो आप अपने जीपी के पास जा सकते हैं।
जी डॉक्टर अविनाश, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि थर्ड डोज और बूस्टर डोज में क्या फर्क होता है?
सी देखिए, कुछ लोग जिनमें की इम्यूनिटी बहुत ही कम होती है और जिन लोगों को कोई अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन है, उन लोगों के लिए इंस्टेड ऑफ दो वैक्सीन का प्राइमरी शेड्यूल उन्हें एक एक्स्ट्रा डोज दी गई थी, वो थर्ड डोज ऑफ द वैक्सीन थी और वो उनका प्राइमरी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का ही एक पार्ट थी। बूस्टर डोज होती है एक्स्ट्रा वैक्सीन, आपका जब प्राइमरी इम्यूनाइजेशन हो जाता है उससे एक्स्ट्रा जो भी वैक्सीन है उसे बूस्टर कहते हैं। आपने जैसे सुना होगा कि डीपीटी की वैक्सीन होती हैं, टिटनस की वैक्सीन होती हैं, इनके बूस्टर होते हैं, वो प्राइमरी वैक्सीन से एक्स्ट्रा वैक्सीन होती है। तो ये डिफरेंस होता है बूस्टर में और और थर्ड वैक्सीन में।
तो हमें क्या अब थर्ड डोज लगवाने की जरूरत होगी? अब जैसे अब हम बूस्टर डोज ले रहे हैं तो
जो नॉर्मल लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी ठीक है उन्हें बूस्टर डोज लगवानी है, उन्हें थर्ड डोज नहीं लगवानी।
जी, ऐसा भी देखा गया है कि कंट्रीज जैसे कि इज़राइल है, वहां पे अब तो 4 डोज की भी बात कर रहे हैं। तो क्या हमें हर समय एक कुछ समय के अंतराल के बाद एक नई डोज लगवानी पड़ेगी?
देखिए ये अभी रिसर्च का विषय है, अभी इसमें हमारे पास इतना, अभी इसराइल में भी ये काम चल रहा है और जैसे ऐसे समय बीता जाएगा हमारी अंडरस्टैंडिंग वायरस के प्रति बढ़ती जाएगी, उस हिसाब से हम ये बता पाएंगे कि हमें फोर्थ डोज लेनी है कि नहीं। अभी तक के जो भी जो प्लान और पॉलिसीज हैं उस हिसाब से अभी तक हमें दो वैक्सीन के बाद एक बूस्टर वैक्सीन लेने का जो प्लान है वो फॉलो
जी
करना है।
जी डॉक्टर अविनाश, ऐसा मैंने कम्युनिटी में काफी सुना है कि कोविड तो सभी को होना ही है, तो एक बार हो जाने दीजिए, उसके बाद हम देखेंगे। तो लोगों में एक कॉम्प्लेसेंसी जो कहते हैं ना, वो सेट इन हो गई है कि अब जो होगा देखा जाएगा, कब तक हम जो है बार बार बूस्टर डोजेस लगवाएं या कोविड की दूसरी दवाइयां लें, तो एक बार कोविड हो ही जाने दीजिए। तो आपको लगता है कि ये धारणा जो समाज में बन रही है वो ठीक है?
जी देखिए, मैं तो यही बोलूंगा कि डिजीज बहुत जैसा कि हमने देखा है ओवरसीज में, कि इस डिजीज से बहुत ही खतरनाक है, उसमें काफी लोगों की जाने भी गई हैं और हॉस्पिटल सिस्टम पे बहुत स्ट्रेस पड़ा है और उस वजह से भी लोगों की जाने गई हैं। तो ये बात तो ठीक है कि इससे मोर्टेलिटी उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि किसको, आपको जब वायरल इन्फेक्शन होगा तो आप कैसा बिहेव करेंगे, आपका डिजीज कितना सीवियर होगा। और मेजोरिटी ऑफ द लोग होते हैं वो इस वायरल इन्फेक्शन से ठीक हो जाते हैं, पर कुछ परसेंटेज ऑफ द लोग होते हैं उनमें बहुत सीवियर डिजीज होता है और वो अपनी उनकी डेथ भी हो जाती है। तो मेरी राय तो यही होगी कि आप बूस्टर लें, वैक्सीनेशन स्टेटस अपना अप टू डेट रहें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, जिससे आप इस वायरस को से के इन्फेक्शन होने से भी बच सकें, क्योंकि वो तो एक आइडियल सिचुएशन है।
जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू साहिल।